الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي به كثيرا ويضل ويضل به كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اچھا، میں نے آیت ہی الٹی پڑھ دی، نعوذ باللہ، معاف کریں. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بخشتا ہے. تو قرآن کریم کی تفسیر میں گمراہی کے اسباب ہم پڑھ رہے ہیں. مفتی محمد شفیع تقی عثمانی دامت برکاتہم کی کتاب علوم القرآن میں سے، اور جو آخری موضوع ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا خلاف عقل اور ما وراء عقل. خلاف عقل یعنی جو چیز ہماری عقل کی سمجھ کے خلاف ہو، یا کوئی چیز ہماری عقل سے بالا تر ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، حیران کن بات ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں کے بارے میں پھر تفسیر کا کیا 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 ریلیشن شپ بنتی ہے، کیا نسبت بنتی ہے تفسیر کے ساتھ. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے تحت لکھا تھا کہ قرآن کریم کی جو تفسیر قطعی طور پر ہم تک پہنچی ہے نا، 100% ایبسولیوٹ سرٹنٹی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں قطعی طور پر، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ تفسیر تو صرف قرآن مجید کی اپنی آیات سے جو پہنچی ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں، یا صحابہ کرام کے جو اجماع و اتفاق سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بھی تفسیر جو ہے نا، وہ یعنی ایسا کوئی بھی تفسیری نقطہ وہ قطعی مشاہدے کے خلاف ثابت کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، قطعی مشاہدہ. ٹھیک ہے، اب یہ قطعی والا کانسیپٹ جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم قطعی تفسیر کی بھی بات کر رہے ہیں اور قطعی مشاہدے کی بھی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، قطعی کے اگینسٹ یا قطعی کے خلاف جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ٹیکنیکل جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے ظنی. ٹھیک ہے، ظنی یعنی جو چیز 100% پروون نہ ہو اس کو ظنی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظنی تفسیر کی بات نہیں ہو رہی، نہ ظنی مشاہدے کی بات ہو رہی، یہاں پہ قطعی تفسیر اور قطعی مشاہدے کی بات ہو رہی ہے، 100% ادھر بھی اور 100% ادھر بھی. تو یہ دونوں چیزیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ آئندہ کبھی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا، جو لوگوں کو جو جو یعنی غلط فہمی لگ جاتی ہے، تو اس کی جو ہے نا دو وجوہات ہوتی ہیں کہ بھائی مسئلہ یہی کہ وہ قطعی ہوتی نہیں ہے، اس کو قطعی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قطعی ہے. کچھ جو ہیں وہ اس طرف ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں تفسیر کی طرف، جو چیز ظنی تھی اس کو قطعی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرے طرف یعنی سائنس کی طرف، جس کو کہ مشاہداتی علم کہا جاتا ہے، مشاہداتی علم، تو دوسری طرف بھی جو ظنی باتیں ہیں ان کو قطعی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سائنس کی کوئی ڈسکوری یا سائنس کی کوئی آبزرویشن ہے تو وہ ظنی چیز تھی، انہوں نے قطعی سمجھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا، تو بھائی جو چیز جو نہیں ہے اگر آپ اس کو وہ سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے پرابلمز ہوں گی. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہم پڑھ رہے تھے پیج نمبر 388 کے اوپر، کہ جو لوگ زمانے کی مروجہ نظریات سے بہت جلد مرعوب ہو جانے کے عادی ہیں، یعنی ابھی جو ہے نا وہ سائنس کی سائڈ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں دو سائڈز ہیں نا، ایک سائڈ ہے قرآن کی تفسیر والا سائڈ، اور دوسرا سائڈ ہے سائنس والا سائڈ. ٹھیک ہے، تو پہلے حضرت نے سائنس والے سائڈ کو ایڈریس کیا. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ زمانے کی مروجہ نظریات سے بہت جلد مرعوب ہو جانے کے عادی ہیں، وہ کسی چیز کے خلاف عقل ہونے کا فیصلہ بہت جلد کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ حیرت انگیز چیز خلاف عقل نہیں ہوتی، اور نہ اس چیز کو ناممکن کہا جا سکتا ہے جس کے اسباب آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے. ایسی چیز کو مستبعد، غیر معمولی، حیرت انگیز، ठीक है, अंग्रेजी के भी लफ्ज लिख दिए हमारे लिए, हम इंग्लिश स्पीकिंग पीपल पीपल के लिए, राइट, कि इम्प्रोबेबल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी या एस्टोनिशिंग तो कह सकते हैं, लेकिन उसको नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल कहना खुद खिलाफ अकल बात है ना भाई। जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही आप उसको इम्पॉसिबल कह रहे हैं, तो ये तो आपकी अकल की खराबी है ना। जो शख्स मुतअल्लिका फन से वाकिफ ना हो, यानी जिस फन की या जिस फील्ड की बात हो रही हो जो उससे वाकिफ ना हो, तो उसके लिए ये बात कतई नाकाबिले फहम है कि वायरलेस सेट में हजारों मील दूर बैठे हुए इंसान की आवाज़ किस तरह सुनाई दे रही है। और अगर किसी देहाती के सामने ये बात कही जाए तो अजब अजब नहीं कि वो इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दे, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, ठीक है। लेकिन इससे ये लाजम तो नहीं आता कि वायरलेस सेट में दूर दराज के किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देना खिलाफ अकल या नामुमकिन है। बाज़ हज़रात कुरान करीम की तफसीर के मामले में इस फर्क को मलबूज नहीं रखते, बल्कि हर उस चीज़ को खिलाफ अकल या नामुमकिन करार दे देते हैं जो महज हैरत अंगेज या ज्यादा से ज्यादा खिलाफ आदत और मुस्तबद मालूम होती है। खिलाफ आदत का मतलब क्या, के जो के नॉर्मली जो है ना दुनिया के अंदर नहीं जानी पहचानी जाती है, उसको खिलाफ आदत कहते हैं। हालांकि कुरान करीम और अहादीस वगैरह में इस किस्म की बातों का पाया जाना हरगिज महले ताज्जुब नहीं है। हम किताब के शुरू में अर्ज कर चुके हैं कि वही नबूवत का आगाज ही उस मुकाम से होता है जहां अकल की परवाज खत्म हो जाती है। वही व रिसालत के सिलसिले का तो मकसद असली ही यह है कि उसके जरिए इंसान को उन बातों से बाखबर किया जाए जिन्हें वो महज अकल के जरिए नहीं जान सकता। चुनाच अगर वही व रिसालत का सिलसिला ना होता तो अकल माद व आखिरत यानी दोबारा जिंदा किए जाना और मरने के बाद जो है वो हिसाब किताब का मामला होना, जन्नत और जहन्नुम का मामला होना और मलाइका वगैरह का इदराक अज खुद नहीं कर सकती थी। वरना अगर ये सारी बातें निरी अकल से यानी सिर्फ अकल से मालूम हो सकती थी तो अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाने, उन पर वही नाजिल करने और उन्हें आसमानी किताबें देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लिहाजा अगर वही और रिसालत पर ईमान है तो ये भी मानना पड़ेगा कि इल्म के इस जरिए से हमें बहुत सी बातें ऐसी मालूम होंगी जो महज अकल से मालूम नहीं हो सकती थी और जिनका इदराक व तसव्वुर अकल के लिए मुश्किल था। ठीक है, तो सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग क्या है कि जब आपने वही पर और रिसालत पर ईमान लाया है, ठीक है, तो फिर आप अपनी अकल के ऊपर उसको कैसे तोल सकते हैं, ठीक है ना, चीजों को जो कि वही से साबित हो रही हैं, जो कि ईमान। अच्छा, अब मसला वही आता है, अटकता जहां पे आकर के है, वो ये है कि हम मुसलमान होते तो हैं पैदाइशी तौर पर, लेकिन हमें मुसलमान का मतलब नहीं पता होता, ठीक है, हमें मतलब नहीं पता होता कि मुसलमान का मतलब क्या है, क्या है वे, एक इंसान मुसलमान कैसे बनता है, क्यों कहलाता है वो मुसलमान, और ईमान क्या चीज होती है, ये आप कई दफा सुन चुके होंगे बयानात के अंदर, क्लासेस के अंदर, के हमें नहीं पता था, मुझे मुझे नहीं पता था यार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग छोड़े, आप लोग तो माशाल्लाह अल्लाह के वली हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ईमान क्या होता है। हाँ, कम अज कम अब तो पता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है और हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं कि अब तो पता चल गया, लेकिन पहले तो नहीं पता था ना कि ईमान किस चीज को कहते हैं। तो जब हमें पता चला तो फिर उसके बाद जो है हमने दूसरों से पूछना भी शुरू किया कि भाई ईमान क्या कहते हैं, तो जो तारीफ ईमान की थी किसी एक को भी नहीं पता था कि वो क्या होती, किसी एक को भी, दीनदारों की बात हो रही है, कोई दुनियादार नाच गाने वाले को थोड़ी आते हैं क्लासेस के अंदर, बयानात के अंदर, सारे दीनदार थे लेकिन किसी एक को भी नहीं पता था कि ईमान की क्या तारीफ होती है। यानी इस वो कहते हैं ना वो उर्दू का मुहावरा, इस वाले हम्माम के अंदर जो है ना वो सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये है ना मसला, हम मुसलमान हैं लेकिन हमें नहीं पता इस्लाम क्या होता है, हम मोमिन हैं लेकिन हमें नहीं पता ईमान क्या होता है, तो चूंकि पता ही कोई नहीं ईमान, तो इस वजह से अजीब गरीब किस्म की हरकतें करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल बुनियादी इल्म था, यही हमने हासिल नहीं किया, या हमें दिया नहीं गया, जब हम छोटे थे उस वक्त हमें दिया नहीं गया, जब हम बड़े हो गए तो हमने लिया नहीं, राइट, दोनों कसूरवार हैं, देने वाले भी कसूरवार और हम खुद भी कसूरवार, ठीक है। तो यहां से भी सारे मसले खड़े होते हैं, सही है। लोग कहते हैं कि नहीं पता तो सब कुछ है, बस अमल का मसला है, जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है कि पता तो सब कुछ है, अरे भाई बुनियाद तक नहीं पता आगे की बातें तो छोड़ो, बुनियाद तक नहीं पता। बस हमारा मसला यही है ना कि हमने जी उस फलाने को जो है वो वजू करना सही नहीं आता, वजू के फराइज याद नहीं है इसको, वजू की सुन्नत याद नहीं है, तो हाँ भाई ये इल्म है जो कि पढ़ना चाहिए। है, अब वजू करना क्यों है, नमाज पढ़नी क्यों है, ईमान वाला होगा तो नमाज पढ़ेगा, ईमान वाला होगा तो वजू करेगा, तो ईमान क्या है नहीं पता, और ना पता करने की जरूरत है, और ना कभी किसी ने पूछा कि तुम्हें पता भी है कि ईमान का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम अजम्पशंस के ऊपर जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि जी हमें पता है। तो आगे फरमाते हैं कि और जब ये बात तय हो गई कि कुरान हदीस में ऐसी हैरत अंगेज चीज़ों का वजूद उनके मौजू के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब बल्कि ज़रूरी है, तो कुरान करीम की किसी जाहिर व मुतबादिर और इजमाई तफसीर को महज इस बुनियाद पर रद्द नहीं किया जा सकता कि इससे एक हैरत अंगेज बात साबित होती है। यानी कोई जाहिर तफसीर का मतलब वही जो पीछे भी हम उसमें ईमान और कुफर की किताब के तहत भी पढ़ चुके थे, और उसूल फ़िक़्ह के अंदर और उसूल तफसीर के अंदर भी पढ़ते हैं कि भाई जो चीज़ जाहिर है ना, इसके अंदर कोई जो है वो शुबा वगैरह नहीं है। मुतबादर इसको कहते हैं, मुतबादर भी वाजह हो, ठीक है, जिस यानी जो चीज़ वेल नोन हो कि आप नाम सुन करके ना उसका आपका जहन एक तरफ मायल हो जाए, आप आग का नाम सुनेंगे तो आपका जहन जो है वो किस तरफ जाएगा, लकड़ी की तरफ नहीं जाएगा आपका जहन, आपका जहन जो है वो यानी बादल की तरफ तो नहीं जाएगा ना, लफ्ज़ आग सुन करके आपके दिमाग में बादल आएगा या आपके दिमाग में जो है वो चिड़िया आएंगी, नहीं, आपका दिमाग किधर जाएगा, जिस चीज़ को आग कहते हैं उसी तरफ आपका दिमाग जाएगा ना, जहन जाएगा ना। ठीक है, लोगों ने चीखना शुरू कर दिया आग आग आग, अब आप जो है देख रहे हैं वो चिड़िया उड़ती हुई नजर आ रही है तो वो उसको आग कहते हैं, नहीं आप ऐसे तो नहीं सोचेंगे। तो मुदबादर ऐसी मफहूम को कहते हैं कि जिसकी तरफ इंसान का जहन जो है ना वो सुनते के साथ ही माइल हो जाए, यानी वेल नोन। ठीक है, इजमाई तफसीर भी जो कि कॉमनली उलमाए कराम के कंसेंसस के साथ, इजमा के साथ और एग्रीमेंट के साथ जो तफसीर जो है वो साबित हुई हुई है, तो आप उस ऐसी जो तफसीर होती है ना उनको सिर्फ इस बुनियाद पर रद्द नहीं कर सकते कि आपको समझ में नहीं आ रही वो बात, या आपके लिए हैरत अंगेज बात साबित हो रही है उसके अंदर, ता वक्त है कि वो बात वाकयतन खिलाफ अकल यानी नामुमकिन और मुहाल ना हो। लेकिन कुरान करीम की कतई तफसीरों में आज तक कोई बात ऐसी नामुमकिन और खिलाफ अकल साबित नहीं हो सकी और ना कयामत तक हो सकती है। ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी जो है ना ये सिर्फ मुताले के वाले आलिम नहीं है, जिन्होंने बहुत मुताला किया हुआ है और हजारों किताबों को मुताले भी किया हुआ है, और जो है वो तहकीकी तौर पर जो है वो उन्होंने रिसर्च पेपर्स भी लिखे हुए हैं, मकाले भी लिखे हुए हैं, और दुनिया जहां का सफर भी किया हुआ है, तो इनका इनका इल्म बहुत ज्यादा है। नहीं, इसकी बुनियाद पर तो माजी की बात कर सकते हैं, ये मुताले की बुनियाद पर, मुशाहदे की बुनियाद पर तो ये माजी के बारे में बात कर सकते हैं ना, मुस्तकबिल के बारे में तो आप मुताले की बुनियाद पर बात नहीं कर सकते, मुस्तकबिल का तो आपको कुछ नहीं पता। मुस्तकबिल के बारे में ऐसी बात कहना ये तो सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जबकि आपको किसी बात पर यकीन हो, राइट? तो ये खाली किताबी आलम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ईमानी आलम भी है। ठीक है, ईमान और यकीन वाले आलम भी हैं, इसी वजह से मुस्तकबिल के बारे में भी ये बात कह रहे हैं कि कयामत तक ऐसा नहीं हो सकता। इस मसले की मजीद तफसील व तशरीह हम इंशाल्लाह अगले बाब में उसूल तफसीर के तहत करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा वही उसूल तफसीर के बारे में, वही बात कि कतई तफसीर है या कतई जो है वो मुशाहिदा है या जन्नी तफसीर है, और कतई मुशाहिदा है या जन्नी मुशाहिदा है या कतई तफसीर है या दोनों चीज़ें जन्नी है ना, भाई दो पॉसिबिलिटीज हैं तो परम्यूटेशन कितनी बनती हैं, फोर परम्यूटेशंस बनती हैं। परम्यूटेशन मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इस मुकाम पे जन्नी भी आ सकता है, कती भी आ सकता है, दूसरे मुकाम पर भी जन्नी भी आ सकता है, कती भी आ सकता है, तो अब कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, या तो दोनों कतई हैं या दोनों चीजें जन्नी हैं, या एक जन्नी है दूसरा कतई है, या दूसरा कतई है पहला जन्नी है, तो इस तरह से चार पॉसिबिलिटीज बन गई। तो आगे फिर हजरत ने उनको अगले चैप्टर के अंदर तफसील के साथ डिस्कस किया है, बात लेकिन वही है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बात कर चुके हैं उसके ऊपर। अच्छा, तो ये तो उन लोगों की गलती के बारे में बात करी जो साइंस के ऊपर एतमाद करते हैं, ठीक ठीक है ना, यानी जमाने के मरवजा नजरियात से जल्दी मरूब हो जाने वाले, क्योंकि साइंस मौजूदा जमाने की नजरियात के नाम का नाम है। ठीक है, अच्छा दूसरी गलती ये हो गई, दूसरी तरफ वाली यानी तफसीर की तरफ वाली गलती। तो कहते हैं कि दूसरी गलती बाज़ औक़ात ये होती है कि कुरान करीम में कोई तफसीर यकीनी नहीं थी, मतलब कोई ऐसी नहीं होती, मतलब है तो, लेकिन आप किसी ऐसी तफसीर को जो कि कतई नहीं है उसको आप कतई समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि ना कुरान करीम के सियाक व सबाक से, यानी कुरान करीम की किसी दूसरी आयत से ना हो रही है, ना अहल सरसरम की किसी कतई तफसीर से यानी कतई हदीस से, हदीस मुतवातिर से, हदीस मशहूर से, या खबर वाहिद, ठीक है, जिसका के सनद सही है, ठीक है ना, तो इस तरह की किसी भी हदीस से वो बात साबित नहीं हो रही है, ना उम्मत मुस्लिमा के इजमा से वो बात साबित हो रही है, इसके बावजूद वो तफसीर आम लोगों में इतनी मशहूर हो गई थी कि लोग उसे यकीनी और कतई तफसीर समझने लगते हैं। ठीक है, और जब वो अकल की किसी कतई दलील या मुशाहिदे की बिना पर गलत साबित होती है तो बाज ना वाकिफ लोग उस पर इसरार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और बाज कुरान करीम या उसकी यकीनी और कतई तफसीरों के बारे में ये समझते हैं कि वो इसी तरह खिलाफ अकल हो सकती हैं, लिहाजा ऐसे मौके पर यह देखना चाहिए कि कुरान करीम की जो तफसीर अकल की किसी दलील कतई या मुशाहिदे के खिलाफ मालूम हो रही है वो किस दर्जे की तफसीर है, कतई दर्जे की तफसीर है या जन्नी दर्जे की तफसीर है। हो सकता है वो जन्नी दर्जे की तफसीर, कतई दर्जे की तफसीर हो ही ना, महज आम शोहरत की बिना पर उसे यकीनी तफसीर समझ लेना ये गलत बात है। ठीक है ना, अवाम उन्नास में वो मशहूर हो गई तो ये उसके कतई तफसीर होने की दलील नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी को कुछ गलत वो शुबा हो रहा है कि ज़रूरियाते दीन की हमने तारीफ पढ़ी थी उसमें ईमान और कुफर वाली किताब के अंदर, तो ज़रूरियाते दीन तो उसका इनकार करने वाला तो काफिर हो जाता है, और ज़रूरियात दीन की डेफिनेशन तो यही थी कि वो चीज़ जो कि आम लोगों को भी मालूम, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आम लोगों के अंदर जो चीज़ मशहूर हो तो उससे वो चीज़ कतई नहीं हो जाती, और उधर कह रहे थे कि जो आम लोगों के अंदर मशहूर चीज़ है तो वो इतनी अहम होती है कि उसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। तो फिर ये तो बड़ा बज़ाहिर एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है इसके अंदर आपकी बात में, ठीक है ना, या उलमा की बात में, मेरी तो कौन सी बात है, मैं तो बाप बेटे की बातें ही कर रहा हूँ, राइट, बाप की किताब थी ईमान और कुफर कुरान की रोशनी में, और ये बेटे साहब की किताब है उलूम तफसीर, तो हम तो बाप बेटा हजरात की बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे। तो इनकी बातों में जो कॉन्ट्रडिक्शन आपको अगर नजर आ रहा तो वो कॉन्ट्रडिक्शन असल में नहीं है, बल्कि वो एक अलग चीज की बात हो रही थी, यहाँ पे एक अलग चीज की बात हो रही। ठीक है, वो जरूरियात दीन, वो अफआले दीन या वो नजरियात दीन जो कि उलमा में भी राइज हैं, उलमा में भी एक्सेप्टेड हैं और अवाम उन्नास में भी एक्सेप्टेड है, ऐसी चीजों को जरूरियात दीन कहा जाता है, जो उलमा को भी मालूम है लेकिन अवाम उन्नास को भी मालूम है, ठीक है, उसको जरूरियात दीन कहा जाता है। यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि उलमा तो उसको कतई नहीं समझ रहे थे लेकिन अवाम उन्नास उसको कतई समझना शुरू हो गए शोहरत की वजह से खाली। ठीक है, तो अब फर्क है ना इन दोनों चीजों के अंदर, ये दोनों चीजें एक नहीं है। ठीक है, जरूरियात दीन एक अलग चीज है और ये जो है वो एक अलग चीज है, यहाँ पर उस चीज की बात हो रही है जो कि उलमा को तो मालूम है कि वो कतई है ही नहीं लेकिन अवाम उन्नास जो है वो गलत फहमी का शिकार होकर उसको कतई समझना शुरू हो गए। ठीक है, ये बहस उसूल तफसीर के तहत कदरे तफसील के साथ आगे आ रही है कि जब अकली और नकली दलाइल में तजाद मालूम हो तो सही राह अमल क्या है, इस उस मौके पर इस बहस को जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, वही जो अगला चैप्टर है उसूल तफसीर का, उसके अंदर फिर ये डिस्कशन आ रही है। अच्छा जरा इसको पॉज करिएगा, फोन कॉल लेनी पड़ेगी। तो अगला मौजूद कुरान करीम के मौजू को गलत समझना, ठीक है, यानी कुरान करीम की तफसीर में गुमराही के असबाब में, अब जो अगला सबक चौथा सबक हजरत ने लिखा है वो है कुरान करीम के मौजू को गलत समझना। मौजू किस चीज को कहते हैं, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक भी कहते हैं हम लोग आम अंग्रेजी जुबान के अंदर इसको, कि किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, किस मौजू पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। या मौजू गुफ्तगु क्या है, ठीक है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर डिस्कशन, राइट। तो कुरान करीम का मौजू क्या है, तो कहते हैं कि तफसीर कुरान के बारे में चौथी गुमराही ये है कि बाज लोग कुरान करीम के मौजू को ठीक ठीक नहीं समझते और इसमें वो बातें तलाश करने की कोशिश करते हैं जो इसके मौजू से खारिज हैं, यानी जो इसके मौजू में दाखिल ही नहीं है। मसलन बाज हजरात इस जस्तजू में रहते हैं कि कुरान करीम से कायनात के तमाम साइंसी और तबई हकायक मुस्तम्बत किए जाएं, ठीक है, तबई नेचुरल क्या कहते हैं फैक्ट्स, ठीक है, तो साइंटिफिक फैक्ट्स या नेचुरल फैक्ट्स आप कहें उसको, वो कुरान मजीद में तलाश करते हैं, और साइंस के मुसल्लमात को कुरान करीम से साबित किया जाए, यानी जिसको साइंस ने तस्लीम कर लिया, मुसल्लमात का मतलब जिसको साइंस ने तस्लीम कर लिया उसको कुरान मजीद से साबित किया जाए। वो ये समझते हैं कि अगर कुरान से साइंस के ये मसाइल साबित ना हो सके तो माज़ अल्लाह ये कुरान करीम का नुक्स होगा, ठीक है, ये तो कैसे हो सकता है कुरान करीम का नुक्स, ठीक है, तो ये
तो
वो एक, 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 एक कहते हैं ना उसको, नहीं, चुनाचे वो पूरे खुलूस के साथ, पूरे खुलूस के साथ, यानी बाकायदा इस्लाम दोस्ती, ठीक है, तो पूरे खुलूस के साथ कुरानी आयात से साइंसी मुसल्लमात साबित करने की फिक्र में रहते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो जो लोग साइंस को ज्यादा अहम समझते हैं, जो लोग साइंस को ज्यादा अहम समझते हैं, ठीक है, तो ये लोग जो है ना जिनकी अभी यहाँ पे बात हो रही है, ये उन लोगों को ज्यादा अहम समझते हैं, जो लोग साइंस को ज्यादा अहम समझते हैं ये पुरखलूस मुसलमान, ये उन लोगों को ज्यादा अहम समझते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आए, ये अगर आप लिख लें तो इंशाल्लाह फायदा होगा, मसला ये होता है, ठीक है, क्यों अहम ज्यादा समझता है उन लोगों को, क्योंकि एक वजह उसकी ये होती है कि उनके साथ दोस्ती होती है, उनके साथ दोस्ती होती है, उनके साथ मोहब्बत होती है, क्योंकि दोस्ती नाम ही मोहब्बत का है असल में, कल्बी ताल्लुक, ठीक है, कल्बी ताल्लुक, दिली ताल्लुक इज इक्वल टू मोहब्बत इज इक्वल टू दोस्ती, ये बात मान जाए ना भी चाहे तो, ठीक है ना, तो उनके साथ मोहब्बत है, उनके साथ दोस्ती है, उनके साथ जो है वो आपका कल्बी ताल्लुक है, ठीक है, तो जिनके साथ कल्बी ताल्लुक होता है ना फिर वो अहम होते हैं, उसके बरखिलाफ जो मौलवी तबका है, राइट, जिनमें सबसे पहले कौन आते हैं, सहाबाए कराम, क्योंकि सहाबाए कराम जो है वो सबसे पहले मौलवी थे, ठीक है, तो मौलवी तबका सहाबाए कराम, फिर सहाबा के स्टूडेंट्स, फिर उनके स्टूडेंट्स, फिर उनके स्टूडेंट्स, फिर उनके स्टूडेंट्स, आज तक जो उलमाए हक हैं वो सारा का सारा मौलवी तबका है, सहाबा से लेकर के आज तक के मौलवी, उलमाए हक वाले मौलवी, ये सब का सब मौलवी तबका है, तो मौलवी तबके के साथ मोहब्बत नहीं होती, उनके साथ कल्बी ताल्लुक नहीं होता, उनके साथ जो है वो दोस्ती नहीं होती, ठीक है, तो भाई फिर आप किस चीज को प्रेफर करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे, उनको प्रेफर करेंगे ना, उनको तरजीह देंगे ना जिनसे आपको दोस्ती है, जिनसे आपको मोहब्बत है, जिनसे आपको मोहब्बत नहीं तो उनकी बात या उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स या उनकी डेफिनेशन वो तो आपके लिए कम अहमियत रखती है, ठीक है, तो ये वजह बनती है सर, इसी वजह से ना हमारे दीन के अंदर दोस्ती के बारे में बहुत यानी एहतियात करने की तालीम दी गई है कि तुम हर एक को दोस्त मत बनाओ, ठीक है ना, बहुत छान फटक करके दोस्त बनाओ, ठीक है ना, उसका सबसे पहले तो उसका ईमान देखो, उसका यकीन देखो, फिर उसके अखलाक देखो, ठीक है ना, फिर उसके बाद दोस्त बनाओ, वरना मत बनाओ दोस्त, कारोबारी ताल्लुक रखो, राइट, जरूरत का रिश्ता रखो, दोस्ती मत बनाओ लोगों के साथ, और जो तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने बच्चों के लिए भी वही पसंद करो, अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों के साथ दोस्त ना बनाने दो, क्योंकि फिर उनके लिए वो लोग अहम हो जाएंगे, ठीक है, जो साइंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं कुरान के मुकाबले में, और फिर वो यही होगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी, या वही लता लई तनी लम अतखिज फुलानन खलीला। ठीक है, जजाकुम अल्लाह। सूरह फुरकान की आयत भी हजरत इन्होंने नकल कर दी काजू भाई ने, कि भाई कयामत के दिन जो है ना वो अफसोस करेगा इंसान, आए काश कि मैंने फलाने को अपना दोस्त ना बनाया होता। ठीक है ना, हिदायत आने के बाद, अगली आयत जो है ना उसका तर्जुमा खाली के, हिदायत आने के बाद उसने मुझे गुमराह कर दिया। मेरे पास कुरान की तफसीर आ गई थी, मेरे पास जो है उलमाए कराम की जो है वो दलीलें भी आ गई थी, लेकिन जिसको मैंने दोस्त बनाया था ना, उसने इन दलीलों के मेरे पास पहुंच जाने के बावजूद मुझे गुमराह कर दिया। उस दिन जो है ना वो कफे अफसोस मलने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चुनाचे वो पूरे खुलूस के साथ, यानी खुलूस से मुराद यहाँ पर क्या है कि भाई बड़ा इस्लाम दोस्ती अपने अपने जोम में खुलूस होता है, ये असल ये हकीकी खुलूस नहीं होता, ये अपने जोम में अपने गुमान में जो है ना वो खुलूस होता है। हकीकत में थोड़ी इसको इखलास कहते हैं, इखलास तो वो होता है जो अल्लाह उसके यानी आखिरत के लिए जो काम किया जा रहा हो, और अल्लाह और आखिरत के लिए जो है काम आप अल्लाह और आखिरत के, अल्लाह के और रसूल के बताए हुए तरीके के किसी को छोड़ करके किसी और तरीके से आप आखिरत कमाएंगे। तो जो तरीका अल्लाह उसके रसूल ने बताया उस तरीके से जब अल्लाह और रसूल अल्लाह और आखिरत कमाने की कोशिश की जाएगी उसको इखलास कहा जाता है। तो यहाँ पर हजरत ने जो लफ्ज़ खुलूस इस्तेमाल किया है ना, ये इसके मजाजी मानी में आप समझ लें, ठीक है, हकीकी मानी में इस्तेमाल नहीं किया है। चुनाचे वो पूरे खुलूस के साथ पुरानी आयात से साइंसी मुसलमान साबित करने की फिक्र में रहते हैं, और बाज़ औक़ात इस गर्ज़ के लिए कुरानी अल्फाज को गलत माना पहना देते हैं। हालांकि वाक़ यह है कि कुरानी करीम का असल मौजू साइंस नहीं है, ठीक है ना। इसमें अगर कहीं कायनाती हकायक का जिक्र आया है तो ज़मीनी तौर से आया है। ज़मीनी का मतलब इज़ नॉट द एक्चुअल पर्पज ऑफ कुरान, वो यानी टू सर्व ए स्पेसिफिक पर्पज, उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो किसी कायनाती हकीकत का जिक्र कर दिया है। लिहाजा अगर इसमें कहीं कोई साइंटिफिक हकीकत वाज़े तौर से मिल जाए तो उस पर तो बिलाशुबा ईमान रखना चाहिए, लेकिन साइंस का कोई मसला पहले से जहन में रखकर कुरान करीम से उसे जबरदस्ती निकालने की यानी जबरदस्ती डिराइव करने की कोशिश ऐसी ही है जैसे कोई शख्स तिब की किताब में कानून के मसाइल तलाश करने लगे, या कानून की किताब में मेडिकल साइंस के मसाइल तलाश करने लगे। भाई ये तो है ही नहीं, मेडिकल साइंस की किताब या जो है वो एनवायरमेंटल साइंस की किताब, या कुरान करीम ने अपना मौजू और मकसद नुजूल मुबहम नहीं छोड़ा, बल्कि बीसियों आयात में ये वाजह कर दिया है कि इसे क्यों नाजिल किया गया है। ठीक है, यानी अगर अल्लाह ताला किसी बात को मुबहम छोड़ देते ना, तो फिर आप उसके बारे में, फिर है बहुत सारी बातें मुबहम है, हर बात तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नहीं बयान करवाई, तो फिर वो फिर आप हदीस मुबारका में तलाश करते हैं, हदीस में भी नहीं मिलती। वो जो मुआज़ बिन जबल अल्लाह ताला वाली मशहूर हदीस है वो क्या है, वो यही है ना कि नबी अल्लाह ने फरमाया कि तुम जा रहे हो यमन मेरा मेरे नायब बन करके, तो वहां पर जब कोई मसला पेश आएगा तो तुम उसको कैसे हल करोगे, फरमाया मैं कुरान मजीद में उसका हल देखूंगा। नबी रसूल ने पूछा अगर कुरान मजीद में ना मिले वो बात फिर क्या करोगे, मैं आपकी सुन्नत में तलाश करूं। अच्छा अगर मुआज तुम्हें मेरी सुन्नत में भी ना मिले फिर तुम क्या करोगे, मैं इज्तिहाद करूं, राइट, यानी अपनी राय अपने उलूम की रोशनी में उसूल बनाऊंगा और उस उसूल के साथ मैं अपनी राय इस्तेमाल करूंगा, इसको इज्तिहाद करना कहते हैं। क्या मतलब हुआ हमारे डिस्कशन से, इसकी क्या रेलेवेंस है कि हर चीज क्लियर नहीं रखी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद, ठीक है ना, जब भी तो इज्तिहाद की नौबत आ रही है, लेकिन ये वाली बात ऐसी है वो अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ी अनक्लियर, बल्कि बिल्कुल क्लियर कर दी। जैसे आज सुबह को खवातीन की क्लास में भी यही बात हुई कि हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी के दिल में ये बात पैदा हो सकती थी कि चलो हम जैसे गुनाहगारों के हाथ में हिदायत नहीं है, लेकिन अल्लाह के हबीब के हाथ में तो हिदायत होगी, राइट, वो तो अल्लाह के हबीब हैं, वो तो गुनाहगार नहीं हैं, वो तो मासूम हैं, वो तो बेहतरीन अखलाक वाले हैं, तो उनके हाथ में हिदायत होगी, राइट, आ सकता था ना भाई किसी कोट एंड कोट आशिक रसूल के दिल में ये बात आ सकती थी ना, ठीक है ना। और फिर अगर कोई दूसरा कहता कि नहीं हिदायत तो अल्लाह ही के हाथ में है, तो फिर उस शाके रसूल तो जाकर के उसको पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा करके उसको जो है वो लटका चुके होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इस वाली बात को भी, बिसाइड मेनी अदर बातें भी ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुबहम नहीं छोड़ा, ठीक है, बल्कि फरमा दिया कि क्या है वो आयत, फइन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन, ए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आपके हाथ में भी हिदायत नहीं, ठीक है ना, एक्सप्लिसिटली बयान कर दिया। उसी तरीके से यहां पर हजरत जो फरमा रहे हैं कि कुरान का मौजू क्या है, ये भी कुरान ने एक्सप्लिसिटली एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बीसियों जगह पे बयान फरमा दिया। तो उसकी बहुत सारी मिसालें हजरत ने यहाँ पे लिखी हैं, शायद वो सारी हम यहाँ पे पढ़ें भी नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही आप लोगों का तो ईमान इस बात पर है ना कि कुरान मजीद का मौजू क्या है, लेकिन अगर उसके ऊपर आपको कुरानी दलाइल किसी को देने पड़ जाए तो सारे के सारे यहाँ पे लिखे, ठीक है ना, वेरी कंसाइसली, वेरी ब्रीफली, खुलासे के तौर पर इन तमाम आयात का तकरीबन निचोड़ यही है कि बशीरों व नजीरा, खुशखबरी देने के लिए नेक लोगों को और डराने के लिए जो बात मानने वाले नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए और आखिरत की जिंदगी बनाने के लिए ये मकसद है कुरान मजीद का। ठीक है, तो हम जो है ना इसको थोड़ा सा आगे अगर हम स्किप कर दें, जिक्र मिन रब्बिकुम जैसे फरमाया, व जिक्रा लिल मोमिनीन, ये नसीहत नामा है ईमान वालों के लिए, यानी मानने वालों के लिए नसीहत नामा है, और हुवल हक मिन रब्बिका लितुनज़िरा कौमन, ये हक है आपके रब की तरफ से ताकि आप अपनी कौम को डराएं। ठीक है, तो यही सारी रिपीटेशन चल रही हैं, तो ये चंद मिसालें दे करके हम स्किप कर रहे हैं पेज नंबर 395 के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे हजरत ने इन आयात को दलील के तौर पे पेश करके फिर फरमाया कि ये महज चंद मिसालें हैं, और अगर सिर्फ इन्हीं पर गौर कर लिया जाए तो ये वाजह हो जाता है कि कुरान करीम का असल मकसद इंसान को आखिरत की तैयारी पर आमादा करना और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तालीम व तरगीब है। ठीक है, ये है कुरान मजीद का मौजू, और ये है कुरान मजीद की गर्ज़ व गायत भी, मकसद भी। ठीक है, तो अब ये तो आज का क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो हम बाकी जो है वो अगली क्लास के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन बस एक टच करके एक बात को कि भाई आखिरत की जिंदगी के लिए तैयार करने का तरीका क्या अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है कुरान मजीद के अंदर, कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमें कुरान मजीद के अंदर अताअत का हुक्म देते हैं और हमारा मकसद जिंदगी जो है वो बंदगी बताते हैं, ये मकसद जिंदगी हमारा है जिससे कि हमें आखिरत की कामयाबी हासिल होगी, अताअत करके अल्लाह की, उसके रसूल की और उलुल अम्रे मिनकुम के जो जो हुक्म है इनकी अताअत करके अल्लाह ताला की रजा और आखिरत की जजा हासिल होगी, और फिर उसके बाद मजीद इसको अगर आप यानी अवामी लेवल के ऊपर जाए, ठीक है, एक तो होगी ना बंदगी, बंदगी किसकी होती है, अल्लाह की, ठीक है ना, रसूल की बंदगी नहीं नहीं करता कोई, रसूल की बंदगी का हुक्म नहीं दिया गया, मशायख की और उलमा की बंदगी का हुक्म नहीं दिया गया, सिर्फ अल्लाह की बंदगी, ठीक है ना, लेकिन अताअत जो है वो अल्लाह रसूल उलिल अम्रे मिनकुम, ये अताअत हो गई, ठीक है ना, तो ये सब कौन है, ये भी ऊपर वाले लोग हैं ना, उलिल अम्रे मिनकुम भी ऊपर होता है ना हमारे, ठीक है ना, चाहे वो सल्तनत का अमीर हो, चाहे वो जो है वो शेख हो, चाहे जो है वो काजी साहब हो, वो ऊपर वाले हैं, रसूल तो ऊपर वाले ही है और अल्लाह तो सबसे ऊपर वाले हैं, तो ये ऊपर वालों की बात हो गई। व्हाट अबाउट पीयर्स, व्हाट अबाउट हमारे बराबर के लोग या हमारे कम दर्जे के लोग, जैसे उम्र में कम है या इल्म में कम है या किसी और तरीके से वो हमसे कमतर है या हमारे बराबर, उनके बारे में क्या फरमाता है कुरान कामयाबी के लिए, इन्नल्लाह यामुरकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, राइट, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम हर एक को उसका ड्यू अमानत, ये नहीं कि उसने रखवाई थी अमानत अब उसने आपको वापस, नहीं, इस आयत के अंदर अमानत से वो वाली अमानत मुराद नहीं है जो आपके लिए पास टेम्पोरिली रखवाई गई थी, किसी आदमी ने रखवाई थी अब आप जो है उसको वापस करें, नहीं, इसके लिए अंग्रेजी का लफ्ज ज्यादा अप्रोप्रिएट, या उर्दू में भी और अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ड्यू कहते हैं, DUE, जो भी ड्यू है जिसका हक, उर्दू में इसको हुकूक की अदायगी कहते हैं, ऑब्लिगेशंस हों या हुकूक, राइट्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। तो ये है आखरत की कामयाबी, बंदगी अल्लाह की, अताअत अल्लाह के हुक्मों की, ठीक है, जो अल्लाह ने बनाए हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने बताए हैं और उलमा मशायख ने समझाए हैं, ये हो गई। और जो हुकूक इन्हीं हुक्मों के जरिए से, इन्हीं इसी इल्म के जरिए से जो हमें हुकूक पता चलते हैं, उनकी अदायगी, ठीक है ना। तो ये है मौजूए कुरान, और ये है मौजूए कुरान को हासिल करने का तरीका, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह किसने तौफीक दी तो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।